عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 6 کلائی والی جونگ تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی گر گئی، لیکن ہتھیلی والی سرمئی جونگ میرے سیاہ مقدر کی طرح میرے گوشت سے چپکی ہی رہی۔ درد، جلن اور چبھن کی ایک کٹیلی لہر میری انگلیوں کی پوروں سے ہوتی ہوئی پورے بازو میں پھیل گئی۔ میرا ہاتھ نیلا پڑنے لگا اور میں نے بے اختیار شدید تکلیف کے عالم میں اپنا ہاتھ گرم جلتی ریت میں گھونپ دیا۔ جونگ کی نازک اور لجلجی سی چمکیلی جلد سے شدید تپتی ریت ٹکرائی تو ہلکی سی ایسی آواز بلند ہوئی جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر کوئی پانی کا چھینٹا مار دے۔ جونک تڑپ کر اچھلی اور اس کا نوکیلا ڈنک میری ہتھیلی سے نکل گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے رومال نکال کر پانی میں بھگویا اور اسے اپنے خشک چٹکتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے ہونٹوں کی جلی ہوئی جلد کو ذرا سی نمی میسر آئی تو ان کی حالت مزید خراب ہو گئی اور خون کی پتلی سی چند لکیریں رومال کی سطح پر ابھر آئیں۔ دوسری مرتبہ بھیگا رومال میں نے چہرے پر پھیرا اور تیسری مرتبہ اسے بھگو کر اپنے سر پر باندھ ہی رہا تھا کہ مجھے میری قضا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہاں، یہ وہی بھونکتے کتوں کے دوڑنے اور غرانے کی آواز تھی، مطلب وہ قریب تر ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بھاگا۔ فی الحال وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اور مجھے ایک گمان یہ بھی تھا کہ ساتویں ٹیلے کے بعد اگر وہ اپنی جھونک میں مزید کچھ آگے بڑھ گئے تو انہیں پلٹنے میں دو چار منٹ مزید لگیں گے، کیونکہ اس وقت صحرا میں چلتی گرم لو کا رخ بھی اسی سمت تھا جس طرف میں دوڑ رہا تھا، لہٰذا ان تک میرے جسم کی بو پہنچتے پہنچتے بھی کچھ وقت ضرور لگے گا۔ لیکن اب خود میری اپنی روح دھیرے دھیرے میرے اندر سے سرکنا شروع ہو چکی تھی۔ اگر میں پچھلے چند مہینوں سے سلطان بابا کے ساتھ اتنا پیدل نہ چلا ہوتا اور میں نے جبل پور کے بسیرے کے دوران پہاڑی والی درگاہ کے دشوار راستے روزانہ کئی بار نہ طے کیے ہوتے تو میں یقیناً بہت پہلے ہی گر چکا ہوتا، کیونکہ کالج اور یونیورسٹی میں سپورٹس کے بعد صرف ایک گھنٹہ روزانہ اسکواش کا کھیل ہی میری واحد ورزش رہ گیا تھا، اور آج اس صحرا نے مجھے دوڑ کا اصل مطلب سمجھا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میں نے ریت کے بگولوں کے عقب سے اس پہلے افرید کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میرا شک صحیح تھا، ساتویں ٹیلے کے بعد وہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے اور یہ پہلا تھا جس نے میری بو پا لی تھی۔ میرے قدم تیز ہو گئے لیکن اس کی گراہٹیں بتدریج میرے قریب آنے لگی۔ میرے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میری الجھی سانسیں خود ایک گراہٹ میں تبدیل ہونے لگی۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی تو ایک درندہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ان آخری لمحات میں میرے اندر کا درندہ بھی بیدار ہو گیا۔ اب میں عبداللہ یا ساحر نہیں، صرف ایک انسان باقی رہ گیا تھا جسے اپنی جان بچانے کے لیے ایک خونی افرید کا سامنا تھا۔ پتھر کے دور کے انسان کی تمام جبلتیں ایک دم ہی میرے اندر انگڑائی لے کر جاگ چکی تھی اور اب دوڑتے ہوئے میری نظر چاروں جانب کچھ ایسا تلاش کر رہی تھی جسے میں اپنے دفاع کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا۔ غراہٹیں اب بالکل میرے قریب پہنچ گئی تھی، ساتھ ہی ریت پر دوڑنے کی دھمک اور دھپ دھپ کی آوازیں میرے حواس معطل کیے دے رہی تھی۔ میرا دشمن بہترین سدھائے ہوئے شکاری کی طرح بنا بھونکے اور حتی الامکان آواز نکالے بغیر میرے تعقب میں تھا۔ اچانک ریت میں دبی ایک خشک ٹہنی نما لکڑی پر میری نظر پڑی اور میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اور یہی میری غلطی تھی۔ لکڑی اندر تک ریت میں پھنسی ہوئی تھی، میرے ہاتھ چھلنے کے باوجود وہ پوری طرح باہر نہیں نکلی، لیکن اس اثنا میں پہلا دشمن मेरे सर पर पहुंच चुका था। मेरी नजरें उसी पर जमी हुई थी। उसने दौड़ते हुए बिना रुके मुझ पर जख्म भरी और ठीक उसी लम्हे वो लकड़ी रेत से निकल आई, जिसे मैं वहशियाना अंदाज में ताकत लगाकर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर वो खुश्क लकड़ी पूरी कुव्वत से फजा में लहराई और पता नहीं कुत्ते को वो छड़ी कितनी जोर से लगी कि उसके मुंह से एक सिसकी की आवाज निकली। मैं एक जानिब और वो दूसरी जानिब जा गया, लेकिन उसने पलट कर झपटने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया। लकड़ी मेरे हाथ से चूट कर दूर जा गई थी, लिहाजा अब मुझे अपने शिकस्ता बाजुओं पर ही भरोसा करना था। लेकिन वो भारी भरकम वजूद अपने पूरे बोझ के साथ मेरे सीने पर गिरा तो मेरे जैसे हाथ ही टूट गए। उसके खूनी पंजे मेरे शानों में यूं पैवस्त हुए कि कई खराशों में मिर्चें पड़ी। मेरे हवास यके बाद बिगड़े फिर से जामद होने लगे थे। असल में मुझे इस वक्त इस कुत्ते के वजूद से इतनी तकलीफ नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसकी मुस्तकिल और राहत और सांस की खराहट मेरे हवास मुअत्तल किए जा रही थी। मैं अपने दोनों हाथों से अब तक उसके चेहरे को उसका गला दबाकर अपने चेहरे से दूर रखने में कामयाब था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये कामयाबी आरजी है, क्योंकि मेरे बाजू शल हो रहे थे और उसके पंजे मेरे सारे जिस्म पर जलती खराशें छोड़े जा रहे थे। अचानक मेरी मुट्ठी में कुछ रेत भर गई और बेइख्तियार मैंने सारी की सारी रेत उसकी कातिल आंखों में झोंक दी। वो जोर से चीखा, एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर उसे अपने ऊपर से उछालकर दूर फेंक दिया। मेरा कुर्ता चीथड़ों में तब्दील हो चुका था। मैंने फौरन उसे अपने जिस्म से अलहदा किया और बचे कुचे कपड़े को भागते हुए अपने गले के गिर्द अच्छी तरह कस कर बांध लिया। उसका शिकार मेरी शहरत थी तो मुझे सबसे पहले उसे ही बचाने की फिक्र करनी चाहिए। तब तक मेरा दुश्मन अपना जिस्म झटक कर अपनी आंखों से रेत झाड़ चुका था और फिर से मेरे पीछे लपकने की तैयारी में था। इसी असना में पिछले टीले की जानिब से इसके ग्रोह के दो और साथी नमूदार हुए और मुझे देखकर उन्होंने खुशी से वहशियाना आवाज में आवाजें बुलंद की। मेरे आखिरी लम्हे शुरू हो चुके थे। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी रफ्तार मध्यम पड़ चुकी थी और कदम रेत में धंसना शुरू हो गए थे। मेरे तीन अतराफ से वो तीन कुत्ते मेरे जिस्म को तीन हिस्सों में तकसीम करने के लिए उड़े चले आ रहे थे। तीनों कुत्ते मेरे सर पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये क्या, कुत्ते मेरे करीब आकर रुक से गए। क्या वो मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे थे? फिर मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे सर की पिछली जानिब भी कुछ हुर्राहटें बुलंद हुई है, मतलब ये कि बाकी तीन कुत्ते भी आन पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं गर्दन मोड़ कर पीछे देख लेता। सामने वाले तीन दुश्मनों में से एक ने गुर्रा कर अपना जिस्म तोला। उसकी हड्डियां जख्म लगाने से पहले जिस्म के अंदर चटकी। उसने अपना सारा बोझ अपने पिछले पैरों पर डाला और हवा में मेरी जानिब उछला। मैंने आसमान पर पिघलते सूरज को उसके वजूद के पीछे छुपते देखा। मुझ पर दुश्मन के कहर का साया हुआ और फिर उससे पहले कि वो मुझ पर गिरता एक अजीब बात हुई। अभी दुश्मन का जिस्म हवा ही में मुअल्लक था कि एक और जिस्म जोरदार चिंगाड़ के साथ गुर्राते हुए दुश्मन के जिस्म से लिपटा, टकराया और उसे अपनी लपेट में लेते हुए मुझसे दूर ले जाकर रेत पर गिर गया। चंद लम्हों के लिए छुपा सूरज फिर से मेरी पलकों में बर्छियां घोंप गया और मेरी आंखें फिर से चंधे आ गईं। गुर्राहटें अब बाकायदा चीखों में तब्दील हो रही थी। मैंने बमुश्किल पलट कर करवट ली और हत्तल इम्कान सर उठाकर अपने उस मोहसिन जिस्म को देखने की कोशिश की, जिसने हवा ही से मेरी जानिब उड़कर आती कज़ा को उचक लिया था। और फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा। दुश्मन को हवा ही में दबोच लेने वाला वो काला था, वो और उसके गुरुओं के बाकी दो साथी सीना ताने मेरे और मेरे तीन दुश्मनों के दरमियान सहरा में खड़े थे। उस वक्त दोनों गुरु एक दूसरे को नजरों नजरों में तोल रहे थे, गुर्रा रहे थे, धमका रहे थे। मैं कराह कर उठ बैठा। मुझे लगा उस वक्त मैं काले और दुश्मनों के गुरु के दरमियान होती गुफ्तगू समझ सकता हूँ। दुश्मनों का सरगना बोला, तुम हमारे पुराने साथी रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं। हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें इसकी शारक चीर कर अपने आका के पास ले जानी है, वही आका जो कल तक तुम्हारा भी मालिक था। काला जवाबन हो राया, नहीं, वो कभी मेरा मालिक था, लेकिन अब ये भी मेरा दोस्त है। मैं तुम्हें इसकी जान नहीं लेने दूंगा। तुम लोग वापस पलट जाओ। सरगना भौंका, बस बहुत हो चुका, कुछ ही देर में मेरे तीन मजीद साथी यहां पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस पराए इंसान के चक्कर में हमारा अपना पुराना साथी अपनी जान से जाए। हमने बहुत से मुकाबले साथ जीते हैं, न जाने कितनी जंगें एक साथ लड़ी हैं। अपनी ये आखिरी जंग हमारे खिलाफ न लड़ो। ये इंसान बड़े कमजर्फ और एहसान फरामोश होते हैं। इनके लिए अपने साथ अपने इन दो बेवकूफ साथियों की जान खतरे में न डालो। ये तो हमारी तरह सिधाए हुए भी नहीं हैं और न ही लड़ना जानते हैं। हट जाओ। काले ने जिस्म तोला, अगर ये आखिरी जंग है तो मैं अपनी ये आखिरी लड़ाई एक गद्दार और एहसान फरामोश बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर लड़ूंगा। इतने में दूर से बाकी तीन कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। सरगना ने फातिहाना अंदाज में काले की जानिब देखा। अच्छा तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस जंग में अपने साथ मजीद तीन साथियों को पाकर मेरे अंदर जिंदगी की नई रमक जागी। बाकी तीन दुश्मन अभी कुछ फासले पर थे, लेकिन सहरा में उनके वहशियाना अंदाज में भौंकने की आवाजें बतदरीज करीब आ रही थी। सामने वाले तीन दुश्मनों ने पैंतरा बदलकर मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन काला और उसके गुरु के बाकी दो जानबाज अब मेरे और उन दुश्मनों के दरमियान हायल थे। मैं जानता था कि जैसे ही दुश्मन तीन से छह हुए तब शायद मेरे ये तीन वफादार भी कुछ न कर पाए, क्योंकि उनमें से सिर्फ काला ही बाकायदा सुधाया हुआ था और वही इस खूनी लड़ाई के गुर जानता था। बेहतर यही था कि इन तीन दुश्मनों को अपने पीछे लगाकर मैदान जंग तब्दील किया जाता रहे और फिर मुझे तो हर हाल में आगे ही बढ़ते रहना था। सो मैं एक बार फिर हिम्मत मुजतमा करके उठा और दुश्मनों से पहलू बचाते हुए सहरा में सड़क की समत दौड़ने लगा और फिर मेरे मुंह से एक तवील कराह नुमा चीख निकल गई। मेरे नंगे पैर में हाथ की उंगली जितना एक कांटा इस तरह घुसा कि तलवे को चीरता हुआ ऊपर से निकल गया। मैं उसी कदम लड़खड़ा कर गिरा और पांव जैसे शल हो गए। मैंने जोर से आंखें बंद की और कांटे को एक झटके से खींचकर पांव से अलहदा कर दिया। अचानक मेरा ध्यान नेफे में अटके अपने जूतों की जानिब गया, जो मैंने शुरू ही में खानों की हिदायत के मुताबिक अपने जिस्म के साथ कस कर बांध लिए थे। मैंने जल्दी से जूते पहने। जमीन सख्त हो रही थी, जिसका मतलब था कि अब सड़क कहीं करीब ही थी। कुत्तों की आवाजें भी पिछले टीले तक आ पहुंची थी और फिर पहले तीन का दुश्मन गुरु मेरे सर पर आन पहुंचा। इस बार सरगना ने पीछे से मेरी गर्दन में जबड़े से वार किया, लेकिन मेरे गले में बंधी कमीज के चीथड़ों की वजह से उसके दांत मांस में ठीक तरह से खुब नहीं पाए, लेकिन मैं उसके धक्के से अपनी झोंक में सामने जा गिरा। तब तक मेरे साथी भी पहुंच चुके थे। काले का एक साथी जो मेरी पहरेदारी के लिए मेरे सर की जानिब खड़ा हो गया था, उसे सरगना ने एक जोरदार पंजा मारा और खून के छींटे मेरे चेहरे को भिगो गए। काला भी निहायत बेजिगरी से लड़ रहा था, लेकिन अब दुश्मनों की तादाद छह हो चुकी थी। मैं जब दौड़ते हुए आखिरी टीले पर पहुंचा तो बहुत दूर काली तार कोल की सड़क किसी बारीक धागे की तरह नजर आ रही थी। मैंने टीले के दूसरी जानेब उतरते हुए आखिरी मर्तबा पीछे नजर डाली तो काले से मेरी नजर टकराई। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो, हमने अपना नमक हलाल कर दिया दोस्त, अब आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। अचानक मेरे पैरों के नीचे किसी नर्म और लिजलिजी सतह का एहसास हुआ और मेरे जूते चिपकने से लगे। अरे, ये तो वही सड़क थी जिसे मैं अब भी बहुत दूर देख रहा था। ये सड़क सहरा के अंदर से होती हुई गुजर रही थी और उसके जिस टुकड़े की तरफ मैं भाग रहा था वो उसी सड़क का तसलसल थी, लेकिन ये टुकड़ा रेत के तूफान की वजह से शायद नीचे दबकर रह गया था। खानू की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, अगर तुम इस सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो समझो कि तुमने आधी जंग जीत ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दोनों दुश्मन कफ बहाते, राल टपकाते और अपने मजबूत पंजों से भागते उसी रफ्तार से मेरे ताकुब में आ रहे थे, बल्कि ये फासला बतदरीज कम हो रहा था। मेरे फेफड़ों की बची खुची सांसें भी तेजी से खत्म हो रही थीं। वैसे भी एक जिंदगी के लिए इन फेफड़ों के तमाम खुलियों को जिस कदर मशक्कत सर अंजाम देनी थी, पिछले दो घंटों में वो इससे ज्यादा मेहनत कर चुके थे। अचानक बेख्याली में मेरी नजर आसमान की जानिब उठ गई, शायद वो मेरी आखिरी दुआ का वक्त था। पता नहीं हम हमेशा दुआ करते वक्त हर बार अपनी नजर आसमान की जानिब क्यों उठाते हैं, अपने दिल की जानिब क्यों नहीं देखते? क्या ये भी हमारे कमजोर ईमान की निशानी नहीं है? क्या वो सिर्फ आसमान पर ही बसेरा करता है? मेरी उस आखिरी उठी नजर ने भी उसी लम्हे मुझे मेरी बेईमानी की सजा दे दी। मेरा सर सूरज की तेज रोशनी देखकर जोर से चकराया और मैं किसी मदहोश मैनोश की तरह लड़खड़ाया, और अगले ही लम्हे नर्म लिजलिजी सड़क पर चारों शाने चित पड़ा था। मेरी कोहनियां और घुटने छिलकर स्याह हो चुके थे। मैंने थक कर आंखें मौन ली। जिस्म का एक एक रेशा इस कदर शदीद थकन से चूर था कि अब मुझे दौड़ती गुर्राती राल टपकाती और अपनी तरफ बढ़ती हुई वो मौत भी एक लंबे और आरामदेह सुकून का एक वक्फा ही लग रही थी। हम जिंदगी भर इस बेवफा जिंदगी के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, लेकिन हमारा आखिरी हासिल यही मौत होती है। सहरा में आज इस वक्त दो घंटे की दौड़ और इस लम्हे मेरी तरफ बढ़ती मौत ने जिंदगी का सारा फलसफा खूब अच्छी तरह मुझे सिखा दिया था। मेरा जी चाहा कि अपनी तरह के उन सब इंसानों को जो इस जिंदगी की दौड़ में खुद अपने आप को, अपने रिश्तों को और जियो और जीने दो के उसूलों को भूल चुके हैं, एक बार सहरा की इस दौड़ में ला खड़ा करूं, और जब वो निढाल होकर गिर पड़े, मौत अपने खूनी जबड़े उनकी शारक में पेवस्त करने लगे, तो उनसे बस एक ही सवाल पूछूं, क्या ये बेवफा जिंदगी वाकई इस काबिल थी जिस कदर तुमने उसे प्यार दिया? मेरे दुश्मन बस अब चंद गज ही दूर थे। मैंने डूबती आंखों और बंद होती पलकों से उनमें से अगले वाले को मुझे यूं जमीन पर बेबस गिरा देखकर खुशी से हूकते हुए सुना। उन्हें भी अरसे बाद कोई ऐसा दुश्मन मयसर आया था जिसने आज उनके मसामों से भी पसीना छलका दिया था। आखिरी लम्हे में मैंने उसके खूनी जबड़े को एक खास जाविये पर खुलते और उसके चार लंबे नोकीले दांतों को खास मैकेनिज्म के तहत आगे निकलते हुए देखा। जाहिर है उस कातिल जबिल्लत का खास निशाना मेरी शारग ही थी, मेरे दिल ने कहा खुशामदीद। और ठीक उसी लम्हे फजा में फायर की एक आवाज गूंजी, दुश्मन की अपनी शारग से खून का एक फव्वारा छूटा और मुझ समेत सड़क के उबलते तार कोल को रंग गया। जमीन पर खून गिरने से ऐसी आवाज उभरी जैसे शदीद गर्म और तपते हुए तवे पर कोई ठंडा पानी छड़क दे। फजा में एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर, और दूसरी फायर की आवाज आई। मुझ पर छलांग लगाने वाला पहला दुश्मन बिल्कुल मेरे मुकाबिल गिरा हुआ था और दुश्मन की नब्ज भी डूब रही थी और आंखें मेरी तरफ पलकों के बोझ से बोझल होकर बंद हो रही थी। एक लम्हे के लिए हम दोनों की नजर आपस में टकराई। मुझे लगा जैसे उसने मुझसे कहा हो, अलविदा ऐ दुश्मन, तुमने भी खूब दुश्मनी निभाई। लेकिन हम दोनों ही अपने अपने फर्ज के हाथों मजबूर थे और फिर दुश्मन की आंखें भी मेरी आंखों के साथ ही बंद हो गई। आखिरी चंद लम्हों में मुझे उसकी आंखों में वही मासूमियत दिखाई दी जो किसी बच्चे की आंख में होती है। वाकई खुदा हमें इस दुनिया में शफाफ और मासूम ही भेजता है, मगर हम रफ्ता रफ्ता खुद को मैला और दागदार करते जाते हैं। हम में से कुछ तो फिर भी जिस्म के गुनाह रोजाना वुजू करके और रूह के गुनाह रात को सोते वक्त तौबा करके धोने की कामयाब या नाकाम सही कर ही लेते हैं, लेकिन उनमें से वो जो मेरी तरह उन तमाम दागों समेत ही दुनिया से रुखसत होने को हूं, उन्हें इन आखिरी लम्हों में कैसा महसूस होता होगा? क्या हमें दुनिया में सिर्फ यही दाग समेटने के लिए भेजा जाता है? मुझे इस सड़क पर पड़े इन आखिरी लम्हों में एक अजीब सा अदराक हुआ कि हम में से जमीन पर बसने वाले हर जी रूह का सफर बस मासूम से मासूमियत तक वापसी की एक कहानी ही है। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी अंग्रेजी की प्रोफेसर मार्था से एक इस्तेलाह हमेशा सुनता था, बैक टू द इनोसेंस। लेकिन मासूमियत की तरफ वापसी की इस इस्तेलाह का मतलब मुझे उस रोज समझ आया। हम कामिल मासूम पैदा होते हैं, लेकिन गुनाह हमें गैर मासूम और आसी बना देते हैं। दरअसल मजहब हम पर वारिद ही इसीलिए हुआ है कि वो हमें फिर से मासूम बना दे, और तमाम उम्र मजहब की यही कोशिश रहती है कि वो हमारी इस मासूमियत से मासूमियत तक की वापसी की राह को हमवार कर दे, और शायद ठीक मौत की घड़ी में चंद लम्हों के लिए हम सब फिर से मासूम हो जाते हैं। तभी हमारी कोमल रूह को तहलील होने का मौका मिलता है, वरना गुनाहों से लिथड़े इस कसीफ जिस्म के पिंजरे से इस नूरानी हयोले का निकलना नामुमकिन हो जाता। क्या मेरी रूह भी मेरा साथ छोड़ गई थी? मेरा जिस्म तो अभी गुनाहों के बोझ से आजाद नहीं हुआ था। आंखें खुलने में इतनी देर लगी। मेरे सर पर सब्ज आसमान था। क्या वहां फलक का रंग बदल जाता है? अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी, उठ गया भई, जवाना शाबाशे। मैंने चौंक कर दाहिनी तरफ आवाज की जानिब देखा। रेंजर्स का एक सिपाही अपनी बंदूक साफ कर रहा था। ओ, तो मैं जिंदा था? और जिसे मैं सब्ज आसमान समझ रहा था, वो पैराशूट के कपड़े से बने हरे खेमे की छत थी। मेरे जहन में खानू का आखिरी जुमला गूंजा, अगर ये सड़क तुम्हें सरहद पर बनी किसी फौजी चौकी तक पहुंचा दे तो समझ लेना कि यही तुम्हारी जीत है। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मेरे सारे जिस्म में शायद दर्द की एक टीस उठी। सिपाही जल्दी से उठकर मेरे करीब आ गया। ओए आराम से जवान, आराम से, पूरे 6 घंटे बाद तुम होश में आए हो। मेरा नाम हवालदार शेर मोहम्मद है। हम 6 सिपाही हैं इस चौकी की दिन की ड्यूटी पर। मैं ही शिफ्ट इंचार्ज हूं और इस वक्त मैं ही चौकी से बाहर खड़ा इलाके का जायजा ले रहा था, जब मैंने दूर से पहले तुम्हें और फिर तुम्हारे पीछे उन कुत्तों को दौड़ते देखा। वाह भई, अजब दौड़ थी वो भी। और जब तक मैं भागकर अंदर खेमे से अपनी बंदूक लेकर आया, तुम जमीन पर गिर चुके थे। ठीक लम्हे पर अपनी बंदूक और अपना निशाना आजमाने को मिला। खुदा ने सुरखरू किया, वरना मुझे बंदूक पर लगे दूरबीनी निशाने पर कभी भरोसा नहीं रहा। मुझे तुम्हारे और इस कुत्ते के तेजी से करीब आते सरों में से कुत्ते के सर को अलहदा रखकर गोली चलानी थी। और यकीन करो कि एक लम्हे के लिए भी अगर मेरी उंगली कांप जाती तो मुझे वजीरे की मां से बड़ी सलातें सुनने पड़ती। हवालदार जोर से हंसा, वजीरा, वजीर मोहम्मद मेरा 5 साल का बेटा है। मैंने बिस्तर से उतरने की कोशिश की। मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। वो तो तुम्हारी दीवानावार दौड़ से ही पता चल रहा था। वैसे तो मैंने क्रीबी यूनिट से डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो 2 घंटे पहले ही तुम्हें जरूरी इंजेक्शन वगैरह लगा चुका है और तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी भी कर गया है। लेकिन उसने जाते जाते ये भी कहा है कि तुम 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठने की कोशिश भी न करना। वैसे ये माजरा क्या था? मैंने जल्दी जल्दी शेर मोहम्मद को जरूरी तफसील बताई कि मेरे लिए एक एक लम्हा किस कदर कीमती है। शेर मोहम्मद हैरत से मुंह खोले मेरी बात सुनता रहा और अचानक मेरे जहन में आईजी नसीर साहब का ख्याल आया। कमालाबाद अगरचे यहां से 3 दिन ट्रेन के फासले पर था, लेकिन उनके हुक्म पर किसी करीबी जिले की पुलिस मेरी मदद को कालगढ़ आ सकती थी। मैंने जल्दी से शेर मोहम्मद से पूछा, क्या मैं यहां से कमालाबाद एक फोन कर सकता हूं? हां जी, क्यों नहीं, 1 क्या 10 फोन करो। उसने खैमे में रखे एक पुरानी वजह के लोहे के डब्बे को उठाकर 2-3 मरतबा उसकी चरखी घुमाई। दूसरी जानिब से शायद किसी ऑपरेटर ने उठाया। शेर मोहम्मद ने मुझसे कमालाबाद का नंबर पूछा। मैंने उसे बताया कि मुझे नंबर तो जुबानी याद नहीं है, लेकिन कमालाबाद में आईजी नसीर का कोई भी नंबर मिला दें। आखिरकार 5वीं कोशिश पर दूसरी जानिब से घर के नंबर पर पहले किसी ऑपरेटर ने फोन उठाया। मैंने उसे बताया कि मैं सुल्तान बाबा के हवाले से अब्दुल्ला बात कर रहा हूं और मुझे नसीर साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद दूसरी जानिब नसीर साहब की थकी हुई आवाज सुनाई दी। वो शायद आराम कर रहे थे। वो तारुफ करवाने से पहले ही मुझे पहचान चुके थे और जब मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उनके लहजे में फिक्रमंदी के साथ साथ रिवायती पुलिस वालों की तेजी भी दर आई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि अगले आधे घंटे के अंदर करीब तरीन जिले के SP अपनी तमाम तर मुहैया कुमक के साथ कालगढ़ के लिए निकल चुके होंगे और जब तक मैं कालगढ़ की सरहद तक पहुंचूंगा तब तक वो भी मेरा वहीं इंतजार करते हुए मिलेंगे। उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया कि मैं तनहा दोबारा कालगढ़ में दाखिल होने की कोशिश न करूं। जब मैं नसीर साहब से बात करके खेमे के बाहर निकला तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर कुछ फासले पर मेरे दोनों दुश्मनों की लाशों को वो सिपाही एक गहरा गड़ा खोदकर दफनाने की तैयारियों में मसरूफ थे। हवालदार ने अपने इंचार्ज कप्तान साहब से शिफ्ट खत्म होने के बाद मुझे अपनी जीप में कालगढ़ की सरहद तक पहुंचाने की इजाजत ले ली थी। जीप रवाना होने से पहले 2 सिपाही कूदकर पिछली सीटों पर बैठ चुके थे। शेर मोहम्मद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और हम उसी तारकोल की सड़क से होते हुए वापस सहरा की जानिब रवाना हो गए। कुछ घंटे कबल ही कातिल सहरा मेरी सांसें घोंटने के लिए किसी और अंदाज में मुझ पर खुला था और अभी इस वक्त जीप में गुजरते हुए सब कुछ कितना मुख्तलिफ और कितना मेहरबान दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने दौड़ते दौड़ते कितना फासला तय कर लिया था। जीप रेत के टीलों से उतरती चढ़ती कालगढ़ की जानिब बढ़ रही थी और फिर एक टीला उतरते ही मेरी जबान से बेइख्तियार निकला, रोको जीप रोको। हवालदार ने चौंक कर जल्दी से ब्रेक पर पांव रख दिया। मैं तेजी से कूदकर टीले की पिछली जानिब दौड़ा और फिर मेरे कदम रेत ही में धंस कर रह गए। शेर मोहम्मद और सिपाही भी मेरे पीछे ही भागे चले आए और फिर उनकी निगाहों ने भी मेरी नजरों के ताकुब में वो नजारा देख लिया। सामने ही काला अपने 2 साथियों समेत बेजान पड़ा था और चंद कदमों के फासले पर इधर उधर 3 दुश्मनों के लाशें पड़े हुए थे। मैं दौड़ता हुआ काले के पास पहुंचा। मेरे दोस्त ने जिंदगी की बाजी हारने से पहले शदीद जद्दोजहद की थी। मैं वही घुटनों के बल बैठे बैठे रो पड़ा। हवलदार हैरत से ये सारा माजरा देख रहा था। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा, क्या ये 3 तुम्हारे मुहाफिज थे? मेरी आवाज बमुश्किल निकली, नहीं, ये 3 मेरे दोस्त थे। उन्होंने अपने एक दोस्त के लिए अपनी जान दे दी है। मेरा दिल जा रहा था कि चीख चीख कर रहूं। हवलदार मेरी हालत समझ चुका था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और खुद भी जीप के पीछे से तरपाल के नीचे रखे बेलचों में से एक बेलचा लेकर आया और कुछ ही देर में वो एक गहरा गड़ा खोद चुके थे। मैंने काले को अलविदाई सलाम पेश किया और उन्होंने मेरे तीन दोस्तों को मनोरेत तले दबा दिया। मैंने शेर मोहम्मद की जानिब देखा और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं जानता हूं जवान, तुम अपने दुश्मनों को भी यूं पड़ा रहने नहीं दोगे। यही बड़े दुश्मन की निशानी होती है। कुछ ही देर में उतने ही गहरे गड़े में मेरे तीनों दुश्मन भी रेत नशीन हो चुके थे। वो मेरे दुश्मन थे लेकिन वफादार थे। जब हम कालगढ़ के सरस से कुछ फासले पर थे तो मैंने एक जीप के हयाले को तेजी से वापस पलटते देखा, लेकिन शाम के झुटपटे और फासले की वजह से मैं ठीक तरह से गाड़ी पहचान नहीं सका। हवलदार का खर्चा सही था। कुत्तों के वापस न पहुंचने पर जबरूत के हरकारे सहरा में उनकी तलाश में निकल आए थे। जब हम कालगढ़ की बैरूनी हद तक पहुंचे तब तक अंधेरा छा चुका था और दूर से पुलिस की जीपों और एक बड़े ट्रक की जलती बुझती बत्तियां करीब आती नजर आ रही थीं। चंद लम्हों बाद पुलिस के जवानों का एक जम्मे गफीर एक एसपी और डीएसपी की कयादत में वहां आ पहुंचा। अफसरों ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो आईजी साहब की खास हिदायत पर यहां पहुंचे हैं। शेर मोहम्मद ने मुझसे रुखसत होने से पहले मुझे जोर से गले लगा लिया और बोला, मुझे यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है जवान, वरना मैं भी तुम्हारे उस्ताद से मिलने जरूर चलता तुम्हारे साथ। मैंने उसे रुखसत करते हुए धीरे से उससे कहा, जब तुम वजीरे की मां से फोन पर बात करो तो उसे बताना कि तुम्हारा निशाना वाकई बहुत अच्छा है। जीप में बैठता हुआ शेर मोहम्मद जोर से हंस पड़ा। गाड़ी आगे बढ़ गई। एसपी ने वहीं रेत पर लकड़ी की एक छड़ी की मदद से मेरी मालूमात के मुताबिक कालगढ़ का एक छोटा सा नक्शा बना लिया और कले का जोग्राफिया और आने जाने के तमाम मुमकिन रास्ते अपनी फोर्स को अच्छी तरह जहन नशीन करवा दिए। आधे सिपाही डीएसपी की कयादत में दूसरी जानिब से सहरा की तरफ निकलते रास्तों पर पहरे की चौकियां बनाते हुए कालगढ़ का मुहासरा करते हुए बढ़ते गए, जबकि एसपी साहब मेरे साथ आधे सिपाही लिए कालगढ़ दाखिल हो गए। कभी कभी नसीब हमारी सारी गिनती उल्टी कर देता है। हर तवक्को बरअक्स साबित होती है। शायद आज यही जबरूत के साथ होने वाला था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इस कैद खाने में खानू मुझे सहरा के दोजख से निकलने के रास्ते और गुर बता देगा और मैं उसके जानबाजों को काले और उसके दो साथियों की मदद से पछाड़ कर सहरा पार कर जाऊंगा और एक सरहदी चौकी तक भी पहुंच जाऊंगा। चौकी वाले भी अपने फराइज की हदबंदी की वजह से इतनी जल्दी मेरी मदद ना कर पाते, क्योंकि ये पुलिस का केस था। ऐसे में जबरूत ने ये भी कहां सोचा होगा कि मजार पर रहने वाले ये दो फकीर इतनी पहुंच भी रखते होंगे कि एक टेलीफोन पर जिले के एसपी को तमाम लवाजमात के साथ कालगढ़ आने पर रजामंद कर सकेंगे, क्योंकि आम हालात में इस सारे इंतजाम के लिए कम से कम महीना दरकार होता। लेकिन उसकी तमाम तवक्कुआत के बरक्स मैं इस वक्त एसपी समेत कले के दरवाजे पर खड़ा था। दरबान को दरवाजा खोलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। अंदर से कुछ मजाहमत हुई और चंद कारिंदों ने पुलिस पर फायर खोलने की कोशिश की, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही कले के अंदर मौजूद 10-12 मुहाफिज गिरफ्तार हो चुके थे। मैं तेजी से राहदारियों में से दौड़ता हुआ कैदखानों की तरफ बढ़ गया। नूरी और उसके बाप समेत 11 मजीद कैदी इस संदां से बरामद हुए, लेकिन मेरी नजरें सुल्तान बाबा की तलाश में भटक रही थीं। मैंने एक एक काल कोठरी में खुद झांक कर देखा, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं था। कैदी आजाद होने के बाद कले के सहन में जमा थे और खुशी से नारे लगा रहे थे। कले से बाहर कालगढ़ की सारी बस्ती रात होने के बावजूद जमा हो चुकी थी। लोग अपने बिछड़ों के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। जबरूत के जुल्म का सूरज आज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका था, लेकिन खुद जबरूत ना जाने कहां गायब था। अकरम और उसके दो मजीद खास हरकारों का भी कुछ पता नहीं था। मेरी सांसें रुकने लगी। कहीं उसने सुल्तान बाबा को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। नूरी भी अपने बाप समेत सहन ही में खड़ी रो रही थी। मैं वापस दौड़ता हुआ एसपी के पास पहुंचा और उसे बताया कि सुल्तान बाबा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। एसपी वायरलेस पर अपनी फोर्स को हिदायत देने में मशगूल हो गया। इतने में कैदियों के हुजूम से एक कैदी बाहर निकला और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं जानता था तुम कामयाब वापस लौटोगे। आवाज सुनते ही मैंने चौंक कर उसे देखा। वो खानू था। मैं भी रूहानसा सा हो गया। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से मुमकिन हुआ है खानू, लेकिन मेरे सुल्तान बाबा ना जाने कहाँ हैं। सारा कला छान मारा है, लेकिन खानू चिल्लाया, ठहरो, वो जरूर बाबा को कले की उस खुफिया सुरंग के जरिए ले जाने की कोशिश में होंगे जो सीधी सहरा को जा निकलती है। एसपी ने खानू की बात सुनते ही मजीद एक लम्हा जाया किए बिना कुछ सिपाहियों को खानू के साथ उस सुरंग का पता लगाने के लिए दौड़ा दिया। मैंने बढ़ने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। आप रुक जाएं, वहां खतरा हो सकता है। मेरे बस में होता तो मैं सबसे आंख बचाकर वहां से भाग जाता। कुछ ही देर में एक सिपाही हांफता हुआ दौड़कर वापस आया और उसकी बात सुनकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। वो जोर से चीखा, सुरंग मिल गई है साहब, वहां एक बूढ़ा औंधे मुंह पड़ा है। पहला कफारा। उस सिपाही की बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे अभी आसमान फटकर हमारे सरों पर आ गिरेगा। मैं तड़प कर आगे बढ़ा तो किसी दूसरे सिपाही ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे धकेल कर कले की उस गुलाम गर्दिश की तरफ भागा जहां खानू सुरंग दिखाने के लिए बाकी सिपाहियों को ले गया था। वहां थोड़े ही फासले पर मुझे अंदर जाती सीढ़ियां नजर आ गईं, जो बजाहिर किसी तय खाने का रास्ता दिखाई दे रही थी। जाने जबरूत जैसे हर कलेदार को अपने कले में ऐसी खुफिया सुरंगें बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। मैंने तारीख में भी ऐसे बहुत से बादशाहों का तस्करा पढ़ा था जो अपने महल से फरार का ऐसा कोई पोशीदा रास्ता जरूर बनाकर रखते थे। क्या जबर और इख्तदार हमेशा ही से चोर रास्तों का मोहताज रहा है। सुरंग के अंदर सिपाहियों का झपकटा था। इंतहाई तंग होने के बावजूद न जाने इस सुरंग में हवा कहां से आ रही थी। मैं टार्च की रोशनी में बने दायरों से होता हुआ वहां तक पहुंचा जिस जगह की सिपाही ने निशानदेही की थी। हाँ, वो सुल्तान बाबा ही थे। होश हवास से बेगाना, निहायत जर्द रंगत और उखड़ी सांसों के साथ बेसुध पड़े हुए। कुछ सिपाही उनके हाथ पांव मसल कर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा दिल डूबने लगा। कुछ ही देर में सुल्तान बाबा को उठाकर बाहर खुली फिजा में पहुंचा दिया गया। बजाहिर उन्हें कोई चोट लगी नजर नहीं आ रही थी। एसपी साहब ने जब किसी सिपाही को अपनी गाड़ी से मेडिकल बक्स लाने के लिए कहा तो उकदा खुला कि वो डॉक्टर पहले हैं और सीएसएस ऑफिसर बाद में। उन्होंने सुल्तान बाबा का तफसीली मुआयना किया और एक इंजेक्शन भी लगा दिया। उन्हें भी बजाहिर घुटन और थकन के अलावा कोई खास अलामत दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे तलकीन जरूर कर दी कि पहली फुर्सत में उन्हें किसी बड़े अस्पताल में मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए जरूर ले जाऊं। कले में अभी तक अफरा तफरी फैली हुई थी। सिपाहियों के साथ जनाना पुलिस भी थी जिसने कले की तमाम खवातीन को अंदरूनी हाते में जमा करके उन्हें तसल्ली दी कि फिल वक्त उनमें से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपने अपने कमरों में आराम करें। अलबत्ता वाजे रहे कि उनमें से किसी को भी कला छोड़ने की इजाजत नहीं है। रात तेजी से ढल रही थी और मैं वहीं सुल्तान बाबा के सरहाने परेशान बैठा बार बार उनका माथा छू कर देख रहा था। मुझे कुछ हिद्दत सी महसूस हुई तो मैं जल्दी से एसपी साहब को बुला लाया। उन्होंने तस्दीक कर दी, हाँ कुछ बुखार सा तो है, लेकिन इतनी थकन के बाद कोई तशवीश की बात नहीं। मैंने उनसे जब रूत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सारे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी हरासत की इतला नहीं आई। मैंने भीड़ में सकीना के नाना नानी को देखा तो मेरा जी चाहा कि दौड़ कर कहीं छुप जाऊं, लेकिन वो तो खुद मुझे ही तलाश कर रहे थे। जाहिर है उनके पास वही एक सवाल था जिसके बारे में सोचकर ही मेरी सांसें घुटने लगती थीं। अचानक हुजूम में खानू मुझे एक जानिब खड़ा नजर आया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो जल्दी से मेरी जानिब बढ़ा। तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते थे ना? हाँ, और इसीलिए मैंने खुद पुलिस को अपने बारे में सब बता दिया है। एसपी साहब ने मुझे जबरूत के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने का वादा भी किया है। मुझे जबरूत के हर गुनाह का इकरार बयान की सूरत में भरी अदालत में करना होगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। बल्कि पुलिस अगर मुझे सुल्तानी गवाह ना भी बनाए तब भी अदालत में बयान जरूर दूंगा। मैंने गौर से खानू की तरफ देखा। नहीं, तुम जरूर सुल्तानी गवाह ही बनोगे, लेकिन ये तुम्हारा कफारा नहीं होगा। तुम्हारा असल कफारा तुम्हारी रिहाई के बाद शुरू होगा। बोलो, मंजूर है? खानू ने मेरे हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिए। तुम्हारे लिए खानू की जान भी हाजिर है, तुम सिर्फ कफारे की बात करते हो। मैंने उसे दूर खड़े बूढ़े जोड़े की तरफ इशारा करके बताया, ये बूढ़ा और बुढ़िया उसी सकीना के नाना नानी हैं, जो इसी कले की खोली नंबर 7 में दफन है। तुम्हारा पहला कफारा यही है कि उन्हें ले जाकर सकीना की कब्र दिखाओ और इस बुढ़िया के शानों पर पड़ी वो आधी फटी हुई फूलों वाली चादर उस बदनसीब की कब्र पर डाल दो। खानू के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो यूं डर कर दो कदम पीछे हट गया जैसे उसके कदमों तले कोई बिच्छू निकल आया हो। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम चाहो तो मेरा सर काट कर उनके कदमों में डाल दो, लेकिन लेकिन क्या? अभी तो तुम दावा कर रहे थे कि कफारे के लिए हर हद से गुजर जाओगे, फिर इस पहली हद को पार करने से पहले ही तुम्हारे पांव क्यों जलने लगे? वो बेबसी से तिलमिलाया। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मैं उनका सामना कैसे करूंगा? मैंने उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। तुम्हें सिर्फ आज नहीं, सारी उम्र उनका सामना करना है, क्योंकि तुम्हारा असल कफारा अब इन लाचारों की कफालत ही है। अब तुम ही उम्र भर उनकी देखभाल करोगे। जिंदगी भर के गुनाह धोने का इससे बेहतरीन मौका भला और क्या होगा? खानू ने शदीद कश्मकश के आलम में सकीना के बुजुर्गों की जानिब देखा। मैंने धीरे से उसे उनकी जानिब धकेल दिया। बुढ़िया अपने आसपास से गुजरने वाले हर शख्स से यही पूछ रही थी कि क्या कले के सारे कैदी रिहा हो चुके हैं और क्या उनमें से किसी ने उनकी सकीना को कहीं देखा। खानू धीरे धीरे चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। बूढ़ी आंखों ने उससे भी यही सवाल पूछा। खानू ने बिना कुछ कहे उन दोनों का हाथ पकड़ा और अंदरूनी राहदारी की तरफ बढ़ गया। खानू के कदमों में वाजे लर्जिश मुझे इतनी दूर से भी नजर आ रही थी, लेकिन ये लड़खड़ाहट उन कदमों की थी जो आज जिंदगी में पहली मर्तबा कफारे की राह पर आगे बढ़ रहे थे। जाने हमारे कदम तब इस तरह क्यों नहीं लड़खड़ाते और डगमगाते जब हम गुनाह के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं। न जाने कुदरत हम कमजोर और कम हौसला इंसानों को इस कदर साबित कदम और मजबूत क्यों समझती है। सच है कि इंसान का मुकद्दर ये उम्र भर की फिसलन ही है। कम ही ऐसे खुश नसीब होते हैं जो इस अजली ढलान से फिसले बिना ही सीधे नीचे उतर जाते हैं। खानू को उन कोठरियों की जानिब गए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक बुढ़िया की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। साथ ही बूढ़े के रोने की आवाज भी सुनाई थी तो सारी बस्ती वाले उस जानिब दौड़े। मैं वहीं गुमसुम सा सुल्तान बाबा के सरहाने बैठा रहा कि मैं जानता था कि उन बदनसीबों पर क्या कयामत गुजर चुकी है। एक लम्हे को मुझे यूं लगा कि मैंने सकीना के नाना नानी की आस सदा के लिए तोड़कर कुछ अच्छा नहीं किया। क्या बुरा था अगर मैं उन्हें उनकी उम्र के इन आखिरी चंद सालों में इसी भरम में ही जीने देता कि उनकी लाडली नवासी गुमशुदा लेकिन जिंदा है। लेकिन हम में से कितने बहुत से इंसान अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही झूठे भरम में गुजार देते हैं कि वो मुझे छोड़ गई लेकिन बेवफा न थी, वो वापस लौटा है तो फिर मेरा ही होगा, ये दुनिया हमारी नहीं तो क्या, आखिरत तो हमारी ही है, या फिर अगली जिंदगी किसने देखी है, जितना भी जीना है यही जी लें। तो अगर एक भरम और बढ़ जाता तो ऐसा क्या गुनाह हो जाता। लेकिन मैं इस उम्र भर की अजियत से भी वाकिफ था जो किसी के ना खत्म होने वाले इंतजार की सूरत में झेलनी पड़ती है। इंतजार तो खुद पल पल वारिद होती मौत का नाम है, और मैं उन दोनों की बूढ़ी आंखों को इंतजार की इस ऊंची सलीब पर मजीद नहीं लटकाना चाहता था, वरना शायद उनकी पलकें मौत के बाद भी खुली रह जाती। कुछ देर में सुल्तान बाबा ने कराहते हुए आंखें खोल दी। मैं जल्दी से उन पर झुका। अब कैसे हैं आप? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, हुआ क्या था? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। सुल्तान बाबा धीरे से मुस्कुराए। अभी तक बहुत जल्दबाज हो। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताया कि जबरूत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं सिर्फ 12 घंटे के कलील वक्फे में जिले भर की पुलिस नफरी लेकर कले के दरवाजे पर आ पहुंचूंगा। जैसे ही उसे पुलिस की आमद की इतला मिली और सहरा से आईजी वालों ने उसे बताया कि सहरा में सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही की गाड़ियां नजर आ रही हैं, तो उसने सबसे पहले हुकूमत में मौजूद अपने उन आला अहदेदारों से राबता करने की कोशिश की जो उसके दर पर्दा हमदर्द थे, लेकिन हसब मामूल इस मौके पर सभी ने किसी न किसी बहाने से माजरत कर ली। एक आदमी पुलिस के दरबार की घंटी हिलाने की कोशिश की भी तो वहां नसीर साहब की हिदायत का कोफल पड़ा हुआ था। जबरूत के पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और फोर्स कालगढ़ में दाखिल हो चुकी थी। तभी उसने सुल्तान बाबा को तलब किया और झिंझलाकर उनसे पूछा कि आखिर वो हैं कौन। लेकिन इससे पहले कि सुल्तान बाबा कोई जवाब दे पाते, पुलिस की गाड़ियों की आवाजें करीब आने लगी और मजबूरन जबरूत को अफरा तफरी में वहां से भागना पड़ा। जाते जाते उसने अपने हरकारों को सुल्तान बाबा को भी साथ ले जाने का हुक्म दे दिया। लेकिन इस भाग दौड़ में सुल्तान बाबा को 2-4 धक्के सीने पर इस जोर से लगे कि वो भागने वालों के तेज कदमों के लिए जहमत बन गए। जबरूत आगे निकल चुका था, पीछे वालों में से किसी ने उनके सर पर वार किया और वो लोग उन्हें बेसुध पड़ा छोड़कर खुद आगे बढ़ गए। इसके साथ ही कैसेट नंबर 6 अपने अख्ताम को पहुंची। बकिया नावल सुनने के लिए कैसेट नंबर 7 लगा लीजिए। हमारी सौती कुतुब की कापी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर सौती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 225-3803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीब से राबिता करें।